दिन भर तारीख 28 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी भूचाल, अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने छोड़ा प्रधानमंत्री पद।
सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारा पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है।
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, विधानसभा में चर्चा के दौरान जमकर चले आरोपों के तीर।
नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके।
सेकुलरिज्म विचार का चीज है, सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है।
और गोल टेस्ट में भारतीय टीम ने मजबूत की पकड़, श्रीलंका को पहली पारी में 291 रन पर समेटा, कुल बढ़त 495 रन। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा लीक्स मामले में दोषी करार दिया है। इसकी वजह से नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नवाज शरीफ और उनका परिवार लगातार ये कहता रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसराइली कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम और अन्य इलाकों में आज फलस्तीनियों और इसराइली सुरक्षा बलों के बीच झड़प होने की खबरें मिल रही हैं। इसराइली सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी किनारे पर एक फलस्तीनी ने इसराइलियों पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। यरूशलम में पवित्र स्थल हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट के आसपास तनाव बना हुआ है। इसराइली अधिकारियों ने जुमे की नमाज के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पवित्र स्थल में दाखिल नहीं होने दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़पें हुईं। रूस ने अपने खिलाफ अमेरिका के नए प्रतिबंधों के जवाब में पलटवार किया है। रूस का कहना है कि अमेरिका को इसी साल अगस्त महीने के अंत तक रूस में तैनात अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटानी होगी। रूस चाहता है कि उसके जितने राजनयिक कर्मचारी अमेरिका में हैं, उतने ही अमेरिका के कर्मचारी रूस में होने चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस अभी भी रूसोफोबिया से निकल नहीं पाई है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों को खत्म करने की योजना को नकार दिया है, जिससे मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ सीनेटर जॉन मैकन अपना कैंसर का इलाज बीच में छोड़कर संसद सत्र में शामिल हुए, जहां उन्होंने दो अन्य रिपब्लिकन सीनेटर्स के साथ ट्रंप की योजना के विरोध में वोट दिया है। भारत में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम सिंह परमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। गुजरात के इस घटनाक्रम पर राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा,
3 MLA आपने डिफेक्ट कराए, उनसे रिजाइन दे दिया, क्या कैसे कराया मैं सदन में नहीं कह सकता हूं, वो आप कह सकते हैं, अंदरूनी मामला। लेकिन ये मैं और आनंद शर्मा ने, हम उन 3 MLA की बात नहीं कर रहे जिनको, हालांकि वो डायरेक्टली आप पर चार्ज लगता, 3 MLA आप कांग्रेस से रिजाइन करते हैं जिसमें एक चीफ विप है और उसको टिकट देते हैं। अगर टिकट नहीं देते तो आप पकड़े नहीं जाते, तो टिकट आपने उसी रिजाइन करे हुए वाले को टिकट दिया राज्यसभा का, उसका मतलब है आपने डिफेक्शन करवाया।
ये थे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की एक लड़की के गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया है। इस लड़की के साथ उसके एक रिश्तेदार ने ही कथित रूप से बलात्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला डॉक्टरों की एक टीम की रिपोर्ट के आधार पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 32 हफ्ते का गर्भ गिराना लड़की के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत में कानून के मुताबिक 20 हफ्ते के बाद गर्भ को गिराया जाना अपराध है। हालांकि माँ की जान पर खतरे की डॉक्टर यदि पुष्टि कर दें तो गर्भ गिराया जा सकता है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है। नीतीश कुमार के पक्ष में 131 विधायकों ने वोट दिया है, जबकि 108 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। विश्वास मत में वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दावा था कि दूसरे दलों के विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट देंगे, लेकिन विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन पर ही वोट दिए हैं।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव। ये आवाज पाकिस्तान से आई है और ये आवाज भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना से।
80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके।
दिन भर में आज विस्तार से बात होगी दिन की इन दो बड़ी खबरों की और इसी वजह से हम आपको आज अपना साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना नहीं सुना पाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। हम रुख बिहार का करेंगे लेकिन पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने आज उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नवाज शरीफ के परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में हुई जांच के बाद आया। करीब 2 साल पहले लीक हुए पनामा पेपर्स के जरिए शरीफ के बेटे और बेटियों पर आरोप लगाए गए थे। आरोप थे कि ऑफशोर कंपनियों के जरिए उन्होंने लंदन में संपत्ति खरीदी। शरीफ और उनका परिवार आरोपों से इनकार करता रहा। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अपने मुतफिका फैसले में कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने इंतखाबी गोशवारों में दुबई की एक कंपनी FZE में अपनी मुलाजमत को जाहिर न करके असासे छुपाने के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब अदालत उज़्मा के फैसले की रोशनी में 6 हफ्ते के अंदर पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम और FIA के पास पहले से मौजूद मवाद की बुनियाद पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ भी रेफरेंस एहतजाब अदालत में भेजने का हुक्म दिया है। अदालती फैसले में ये कहा गया है कि नैब नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ अदालती कार्रवाई में उनके करीबी दोस्त शेख सईद, मूसा गनी, जावेद कयानी और सईद अहमद को भी शामिल करे। फैसले में मजीद कहा गया है कि नैब इन अफराद के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी दायर कर सकता है अगर उनकी दौलत उनके ज़राए आमदन से मुताबिकत ना रखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेफरेंस दायर करने के बाद एहतसाब अदालत 6 माह में इन रेफरेंस पर फैसला देगी। फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर मुद्दा अलेहान की जानिब से अदालत में दायर की गई दस्तावेजात जाली, झूठी और मनगढ़ंत साबित हों तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो एहतसाब अदालत में इन रेफरेंस पर होने वाली कार्रवाई को मॉनिटर करने के लिए एक जज तैनात करें। अदालत ने सदर ममलिकत से कहा है कि वो मुल्क में जमहूरी निज़ाम के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। कानूनी माहरीन का कहना है कि वजीर आजम की नाअहली आइन की जिन शिकों के तहत हुई है उसके मुताबिक वो जिंदगी भर के लिए नाअहल हो गए हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मियां नवाज शरीफ की कौमी असम्बली की रुकनीत की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर आजम के नाअहल होने के बाद वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है और अब इस वक्त पाकिस्तान में वजीर आजम और वफाकी काबीना का कोई वजूद नहीं है। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
तो क्या है पूरा मामला, आपने शहजाद मलिक की इस रिपोर्ट में सुना। और हम आपको बता दें, नवाज शरीफ को जिस मामले में अयोग्य ठहराया गया है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में करीब 15 महीने तक इसकी सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर किया बल्कि इसकी जाँच भी कराई। अब ये जानना अहम है कि दरअसल ये पनामा पेपर्स हैं क्या जिनकी वजह से नवाज शरीफ मुश्किल में घिर गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहनलाल शर्मा जी, माफ कीजिएगा मोहनलाल जी, आपके नाम में मैं थोड़ा गड़बड़ा गया, मोहनलाल शर्मा जी मौजूद हैं स्टूडियो में। तो मोहन जी, बताइए हमारे श्रोताओं को, दरअसल ये पनामा का मामला क्या है?
वसल दुनिया में सबसे अधिक गोपनीयता से काम करने वाली पनामा की कंपनी मोसाक फोनसेका के लाखों कागजात लीक हो गए थे और इन दस्तावेजों की जानकारी जब सामने आई तो मोसाका फोनसेका ने किस तरह से अपने ग्राहकों को कर से बचाने के लिए कर की चोरी, काले धन को वैध बनाने और प्रतिबंधों से बचाने में मदद की। इन दस्तावेजों की जाँच दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 100 मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर की और इसमें से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार समेत दुनिया के 60 वर्तमान या फिर पुराने नेताओं से जुड़े लोगों के नाम शामिल थे और इनमें कई राष्ट्राध्यक्षों के नाम भी शामिल थे। यहां तक कि भारत के कई नामी गिरामी हस्तियां भी इसमें शक के घेरे में आई। हालांकि जो फोनसेका कंपनी है, इसने कहा कि इसने दावा किया कि वो उन्हीं कंपनियों को अपने यहाँ पर रजिस्टर कराती है जो कि कर चुराने, मनी लॉन्ड्रिंग करने, चरमपंथी गतिविधियों के लिए पैसा देने या फिर अन्य गैर कानूनी कामों में शामिल ना हो। और कंपनी का ये भी दावा था कि वो इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करती है और तभी किसी कंपनी को रजिस्टर करती है अपने यहाँ पर वात्सल्य।
जी जी, नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं और उनका परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने कुछ गलती नहीं की। शुक्रिया मोहनलाल जी। श्रोताओं को हम यहाँ ये बता दें कि पाकिस्तान में इतिहास रहा है कि अब तक किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी तय वक्त से पहले ही पद छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या ये नवाज शरीफ के राजनीतिक जीवन के लिए पूर्ण विराम है? मैंने यही सवाल पूछा इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी से।
देखिए, रास्ते तो अभी तो अमलन बंद हो चुके हैं क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज के तहत उनको नाअहल या डिस्क्वालीफाई किया गया है वो उन पर सारी जिंदगी के लिए है। यानी ये ना अहलियत 5 साल या 10 साल के लिए नहीं है बल्कि सारी जिंदगी के लिए है। तो एक तरह से वो अब अमलन अपनी जिंदगी में कभी ना वजीर आजम बन सकेंगे और ना ही किसी भी सियासी जमात के सरबराह बन सकेंगे ता वक्त के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट कोई तब्दीली कर दे या आइन में कोई तब्दीली कर दी जाए। तो उनके पास अब बहुत कम पॉलिटिकल स्पेस रह गया है। वो एक लीडर के तौर पर तो शायद मौजूद रहेंगे, सियासत में हिस्सा भी लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी के सरबराह हैं और जिस तरह से वो वजीर आजम रहे हैं उनका वो वाला कैरियर जो है शायद खत्म हो गया।
तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक झटका नवाज शरीफ के लिए है। वो लगातार आरोपों से इनकार करते रहे थे, लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान क्या इसी केस की वजह से नवाज शरीफ को याद करेगा?
देखिए, नवाज शरीफ को याद रखा जाएगा एक ऐसे सियासतदान के तौर पे जिसने एस्टेब्लिशमेंट के सामने हथियार नहीं डाले और अपने लिए स्पेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते रहे। आज जिस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो करप्शन का केस नहीं है, उन पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसमें पता ये लगा कि वो दुबई में किसी एक कंपनी के चेयरमैन थे। वो कंपनी उन्होंने अपने जो एसेट्स थे उसमें डिक्लेयर नहीं की थी, उस वजह से उनको कहा गया कि आपने अपने एसेट्स कंसील किए हैं, आपने झूठ बोला है, आपने बातें छुपाई हैं, इसलिए आप नाअहल हो गए। तो करप्शन अभी तक नवाज शरीफ पर साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केसेस एंटी करप्शन कोर्ट को भेजे हैं जो 6 महीने में फैसला करेंगी। उसमें पता लगेगा कि नवाज शरीफ वाकई उन्होंने करप्शन की, ऑफिस को यूज करके पैसे बनाए।
पाकिस्तान की राजनीति में नवाज शरीफ कम बैक मैन रहे हैं, आप कह रहे हैं फिलहाल उनका रास्ता अब बंद नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान की सियासत की अगर मैं बात करूं तो क्या सूरत हाल आपको आगे दिखते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सियासत में कोई चीज लास्ट वर्ड नहीं होती, हर्फ आखिर नहीं होती, तब्दीली हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आइन में तब्दीली कर दी जाए तो नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं और ये पॉसिबल है, ऐसा हुआ है माजी में भी। मिसाल के तौर पे जब पिछली दफा जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए थे तो परवेज मुशर्रफ ने आइन में ये तब्दीली कर दी थी कि कोई भी बंदा 2 मरतबा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बन सकता, लेकिन वो उस आइन की तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया और नवाज शरीफ तीसरी दफा पर वजीर आजम बने। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल उनके रास्ते बंद हो गए हैं, सियासत से वो आउट नहीं हुए हैं, लेकिन बराह रास्त जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे थे चीजों से शायद उनकी गिरफ्त कुछ ढीली पड़े।
विपक्ष लगातार घेरने में लगा हुआ था नवाज शरीफ को, बाकी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए इस फैसले का क्या मायना है?
उनके लिए ये मायनी है कि उनको अब बहुत एहतियात से अपनी सियासत करनी होगी और जिस तरह से पहले होता रहा है कि करप्शन के इल्जाम लगे, साबिक सदर जरदारी पे लगे, बहुत से लोगों पे लगे, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब ऐसा नहीं होगा, अगर वो साफ नहीं रहेंगे तो वो भी एक दिन पकड़ में जरूर आएंगे।
जी, नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है, अब उनकी जगह कौन ले रहा है, क्या कोई संकेत मिल रहा है?
अभी एक मीटिंग चल रही है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में जहां पे ये सारी मुशावरत हो रही है, बातचीत हो रही है। अभी तक नाम कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई काबीना का रुकन होगा जिसको वजीर आजम नामजद करेंगे फौरी तौर पे। नवाज शरीफ जिसके सर पे हाथ रखेंगे वही वजीर आजम बनेगा।
जी, तो नवाज शरीफ को जिन 5 जजों ने बाहर का रास्ता दिखाया, फैसला सुनाया इस मामले पे, वो जज कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। श्रोताओं, हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। पाकिस्तान की सूचना मंत्री रही मरियम औरंगजेब ने क्या कहा, सुनिए।
तो आज के फैसले से सर हैरानगी नहीं हुई लेकिन अफसोस जरूर हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले की तफसीलात को देखेगी।
मरियम कह रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस फैसले को देखेगी और इसके बारे में कानून के जानकारों के साथ सलाह मशविरा करेगी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब होते हुए उन्हें भरोसा भी दिलाया कि इस फैसले में भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। वहीं विपक्षी दल तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए।
मुझे आज खुशी पाकिस्तान के लिए है कि आज पहली दफा मैंने ये दिन देखना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से पावर में है, जिसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारे पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है, हमें पहली दफा उम्मीद है कि हम भी एक बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं।
उम्मीद है तो सवाल भी हैं और एक अहम सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ की कुर्सी जाने से भारत की चिंताएं बढ़ेंगी। सवाल यह भी है कि उनके पद में रहते दोनों देशों के बीच हालात कितने बेहतर हुए थे। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके यही सवाल किए, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
नवाज शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन यहाँ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के साथ संबंध में कभी कोई उत्साह नजर शायद ही आया हो। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा के अनुसार प्रधानमंत्री कोई भी हो पाकिस्तान में सेना की ही चलती है।
एक फंडामेंटल चीज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, और एस्टेब्लिशमेंट से मेरा मतलब आर्मी, वो तो कंट्रोलिंग सीट में 1947 से रही है और आगे भी रहेगी। तो चाहे प्रधानमंत्री मिस्टर एक्स हो या मिस्टर वाई हो, उससे रिश्तों पे कोई असर ज्यादा होने वाला नहीं।
पाकिस्तान में सत्ता असल में सेना के पास है, भारत में ये राय आम है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान मामलों के जानकार रहे और पूर्व राजनयिक विवेक काजू कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना ही असल पावर रखती है।
मेरा ये मानना है कि हम अपना आप को भारत तसल्ली दे सकता है कि वहाँ के सिविलियन नेता से बातचीत हो रही है और सिविलियन नेता चाहता है कि रिश्तों में सुधार, लेकिन ये तसल्ली झूठी तसल्ली हो, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो है वो ये मानती है कि भारत परमानेंट शत्रु और भारत के साथ कभी भी रिश्ते अच्छे नहीं हो, और जब तक ये उनकी भावना है तब तक आगे कैसे बढ़ेगी।
यूं तो भारत की तरजीह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नेताओं से बातचीत करने की रही है, लेकिन पिछले 70 सालों में पाकिस्तान में 4 सेना जनरल सत्ता पर रहे हैं, अयूब खान, यहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। अब धारणा ये बन रही थी कि पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का दौर खत्म हुआ और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। नवाज शरीफ 3री बार प्रधानमंत्री बने तो लगा सत्ता पर अब उनकी पकड़ मजबूत हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार भारत की पाकिस्तान से दोस्ती के हर बार कदम बढ़ाने से एहसास हुआ कि असल सत्ता सेना के पास है। विवेक काजू कहते हैं कि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ काफी लचक दिखाई। उनके अनुसार प्रधानमंत्री की ये कोशिशें पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं आई।
जो संयुक्त बयान जारी हुआ था उफा में वो सेना ने खारिज कर दी, तो उसके बाद जो मुश्किलें पड़ी वो तो सबको मालूम है
जी।
और फिर ये तो मोदी जी का फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मोदी जी ने ये तय किया कि नहीं, भारत कोशिश करनी चाहिए। सेना को मोदी जी के लाहौर दौरा था वो बहुत बुरा लगा, सेना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और हमें ये मालूम है कि उसके कुछ दिनों बाद 3 जनवरी 2016 को पठानकोट में आतंकियों ने अटैक किया, उसके बाद जो दोनों देश के संबंध बिगड़े।
पिछले कुछ महीनों में नवाज शरीफ के सत्ता में रहने के बावजूद दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार सी आई है। भारत ने नवाज शरीफ से कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच दोबारा बातचीत उसी समय शुरू होगी जब पाकिस्तान भारत के अनुसार सरहद पर घुसपैठ बंद कर दे और चरमपंथियों की मदद रोके। पाकिस्तान इनकी मदद से इनकार करता रहा है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब रुख बिहार का, जहां नाटकीय घटनाक्रम के तहत नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी JDU BJP सरकार ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो विश्वास प्रस्ताव पेश किया उसके पक्ष में 131 और विरोध में 108 मत पड़े। सुनिए पटना से नीरज सहाय की ये रिपोर्ट।
महागठबंधन टूटने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को शपथ ग्रहण किया और उनकी सरकार ने कार्यवाहक राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के आदेश पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आज सदन के अंदर और बाहर भारी हंगामे के बीच विश्वासमत हासिल कर लिया। सरकार के पक्ष में 131 और विरोध में 108 मत पड़े। सदन की कार्यवाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करने के साथ शुरू हुई। इसके विरोध में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन टूटने की पृष्ठभूमि का जिक्र किया और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनादेश को धोखा देने का आरोप लगाया।
मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास जब भाजपा के पास उस समय 91 MLA थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं, भाजपा के लोग। ये जवाब आप लोगों को भी फील्ड में जाकर के देना पड़ेगा।
सदन में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आक्रामक आरोपों का जवाब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया। उनके अनुसार बहस का समापन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्षता भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए नहीं होता।
मैं एक एक बात का जवाब दूंगा और समय पर जवाब दूंगा। ये लोग अहंकार में जीने वाले हैं, भ्रम पालते हैं, और हमको जो मैंडेट मिला, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, वह काम करने के लिए दिया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया था, पारदर्शिता के लिए दिया था। सेकुलरिज्म विचार का चीज है, सेकुलरिज्म भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए, शब्द का इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। यहाँ लोग सेकुलरिज्म का पाठ और हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है।
पक्ष विपक्ष के बहस के बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से लॉबी डिवीजन के आधार पर मत विभाजन कराने का आग्रह किया। इस आधार पर वोटिंग कराई गई और सरकार के पक्ष में 131 और विपक्ष में 108 वोट पड़े। इसके साथ ही बिहार में नई सरकार को विश्वासमत हासिल हो गया। अगले सप्ताह तक मंत्रिमंडल विस्तार करने की भी संभावना है। नीरज सहाय, BBC पटना।
और बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। नितिन जी, बड़ी जबरदस्त हलचल है, नाटक ही एक तरह से राजनीतिक नाटक ही चलता हुआ दिख रहा है, अभी कोई दृश्य बाकी है या पटाक्षेप हो गया?
बहुत सारे दृश्य बाकी हैं वास्तव में। अभी इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का निवास है, सरकारी निवास, और उसके बाहर जो है दर्जनों लोग अभी अभी लाइन से अंदर गए हैं उनके दर्शन करने को। जी, और ज्यादातर जो है ये मानकर बात कर रहे हैं कि उनके नेताओं के साथ RJD के साथ छल हुआ है। हालांकि उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिरकार आरोप भी भ्रष्टाचार के हैं, छोटे आरोप नहीं है, हालांकि वो अभी साबित नहीं हुए हैं। तो लेकिन अभी जो मेरी बात हो रही है RJD में और तमाम लोगों से, वो ऐसा समझ में आ रहा है कि पार्टी अभी रणनीति बना रही है कि आगे करना क्या है, लेकिन सच्चाई ये है जो मुझे समझ में आ रहा है अभी तक कि अभी उनके पास कोई रणनीति नहीं है, अभी उनको नहीं पता है कि दरअसल उनको करना क्या है।
लेकिन वो लोग कोर्ट में जा चुके हैं जहां सोमवार को सुनवाई भी होनी है शायद।
जी बिल्कुल, वो कोर्ट में जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा दरअसल लड़ाई जो है, असल जो बात है क्या करना है, वो लड़ाई होगी मतदाताओं से, उन तक पहुंचने की, उन तक बताने की कि दरअसल बात क्या है। हालांकि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी ने हमसे बात नहीं की। हम करीब 3 घंटे से उनके घर के सामने खड़े हैं और तमाम लोगों से वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो बात करेंगे तो हमारा सवाल उनसे यही होगा कि दरअसल अब वो करेंगे क्या, मतदाताओं के पास क्या संदेश लेकर जाएंगे।
जी, क्या संदेश लेकर जाएंगे, ये चिंता मेरे ख्याल से दूसरे खेमे की ओर भी होगी, क्योंकि वहां भी जो दलीलें दी जा रही है वो भी लोगों के गले में कितनी उतर पा रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा।
दरअसल उधर भी चिंताएं बराबर की हैं, या मैं कहूंगा अगर थोड़ी ज्यादा है तो वो बेहतर है, क्योंकि लालू यादव और उनकी जो पार्टी है वो मतदाताओं के पास ये कहकर जा सकती है कि भाई हमें हमारे साथ कथित तौर पर छल हुआ, कपट हुआ। लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के पास सिर्फ यही कहकर जाएंगे कि भाई हमने बिहार के हित में ये किया है, तो मतदाता उनसे पूछेगा कि जब आप हमसे वोट मांगने आए थे तब तो आप लालू जी के साथ वोट मांगने आए थे, अब आप भाजपा के साथ बताने आए हैं कि उन्होंने बिहार के हित में किया है। तो इस तरह से इस वक्त बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति है सभी राजनीतिक दलों के लिए, और आगे का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है बिहार का वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इस पर कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं है।
जी, शर्त लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और नितिन जी, आप वहां मौजूद हैं, और मैं आपसे एक आखिरी संक्षेप में सवाल जानना चाहूंगा, ये जो पूरा घटनाक्रम है लोग दलीलों में तो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये राजनीतिक दल आगे का रास्ता कहां बना रहे हैं 2019 के लिए?
देखिए, सवाल ये भी है वात्सल्य, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। दरअसल 2019 का जो रास्ता है वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी 2019 ही उनकी उनके निशाने पर है
जी।
और लालू प्रसाद और जो उनके दल है, सहयोगी दल है, उनके निशाने पर 2019 के साथ साथ 2020 का विधानसभा चुनाव भी
होगा।
जी,
बहुत शुक्रिया नितिन जी पूरी जानकारी के लिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या बिहार में जनादेश का सम्मान हुआ? बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था, पर नीतीश कुमार ने इस गठजोड़ को तोड़ दिया। क्या उन्हें बीजेपी से हाथ मिलाने की बजाय नए चुनाव करवाने चाहिए थे? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 29 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 या फिर 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो श्रोताओं, आप भी जरूर जुड़ें इंडिया बोल में, और आपको जो कुछ कहना है वो आप अपनी बात इस मंच के जरिए रख सकते हैं। अब रुक करते हैं खेल के मैदान का। श्रीलंका के खिलाफ गोल टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत है, सुनिए रिपोर्ट सुमिरन प्रीत कौर से।
खेल की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा है पहला टेस्ट मैच। आज तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 189 रन। भारत के शिखर धवन ने बनाए 14 रन, चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 15 रन और अभिनव मुकुंद 81 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं विराट कोहली नॉट आउट रहे। इस पहले टेस्ट मैच में अब तक स्कोर कुछ इस प्रकार है कि भारत ने अपनी पहली पारी में बनाए 600 रन, श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में बनाए 291 रन। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच की। ओवल में हो रहे इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और निर्णय लिया बल्लेबाजी करने का, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम लड़खड़ा गई। बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते गए। वहीं ये सिचुएशन संभाली एलेस्टर कुक ने। एलेस्टर कुक ने बनाए 88 रन। इंग्लैंड टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तारीफ की पूर्व कप्तान एलेस्टर कुक की और कहा,
I thought it was a really impressive day. I mean, of course it helps when you've got a player like Alistair Cook still there.
आज का दिन बहुत impressive रहा। मुश्किल परिस्थितियों में भी अगर Alistair Cook जैसा खिलाड़ी हो तो मैच को संभाला जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज दे रहे हों, टेस्ट मैच में ऐसे बैटिंग करते हैं, खास करके जब परिस्थितियां बोलर्स के फेवर में हों।
चलिए अब बात करते हैं फुटबॉल की। विमेन्स यूरोपियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में कल मुकाबला होगा नेदरलैंड्स विमेन और स्वीडन विमेन के बीच। दूसरी तरफ मुकाबला होगा जर्मनी विमेन और डेनमार्क विमेन के बीच। वहीं रविवार को दूसरे क्वार्टर फाइनल्स में मुकाबला होगा ऑस्ट्रिया विमेन और स्पेन विमेन के बीच, और मुकाबला होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
श्रोताओं, वक्त हो रहा है विदा लेने का, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं संदीप राय से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा लीक्स मामले में दोषी करार दिया है। इसराइली कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम और अन्य इलाकों में आज फलस्तीनियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें होने की खबर है। रूस ने कहा है कि अमेरिका को इसी साल अगस्त महीने के अंत तक रूस में तैनात अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या घटानी होगी। अमरीकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों को खत्म करने की योजना को नकार दिया है। आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी के अब तक 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 108 के मुकाबले 131 मतों से विश्वास मत जीत लिया है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के लिए, अपडेट के लिए आप हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर आ सकते हैं। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।